ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا مدنا أوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. یہ سورہ فاتحہ کی چار آیتیں تو ہو چکی ہیں، پھر سے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ ذہن نشین ہو جائے. یہ سورت چونکہ ہر نماز میں اور نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھی جاتی ہے، ضرورت ہے کہ اس کی ہر ہر آیت کا مطلب اور ترجمہ ہمیں یاد ہو، تاکہ جب نماز میں پڑھیں تو اس کو سمجھ کر کے جان دے کر توجہ کے ساتھ پڑھیں. اس لیے سننے والوں سے بھی درخواست ہے کہ اس کے ترجمے کو اور معانی کو اپنے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان اور بہت مہربان ہے. مالک یوم الدین، جو روزے جزا کا مالک ہے، روزے حساب کا مالک ہے. بتلایا تھا کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی ہے، وہاں میدان حشر میں اللہ کے حضور ہمیں اپنی دنیاوی زندگی کے تمام اعمال کا حساب دینا ہے، کوئی بچ کے جا نہیں سکتا. اس دن अल्लाह तबारक व तआला की मिल्कियत और उसकी बादशाहत का जहूर होगा। ये जो कहा गया है कि रोजे जजा का मालिक है, मालिक तो अल्लाह ताला आज भी है, लेकिन दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को भी चीज़ों की मजाजी मिल्कियत अता फरमाई है। मैं और आप कपड़ा पहने हुए हैं, कपड़े के हम मालिक कहलाते हैं, हमारी जेब में जो है हम उसके मालिक कहलाते हैं, अपने मकान के मालिक कहलाते हैं। ये अगरचे ये मिल्कियत जो है हकीकी नहीं है, हकीकी मिल्कियत तो अल्लाह ताला ही की है, लेकिन मालिक मजाजी हैं। दुनिया में फ़ायदा उठाने का अल्लाह तबारक ताला ने मौका दिया। ये सब मिल्कियतें भी उस दिन नहीं रहेगी, किसी के पास कुछ नहीं, कपड़े भी नहीं, जो अल्लाह तबारक ताला कब्रों से जब उठाएंगे तो बदन के ऊपर कपड़ा नहीं होगा, पाँव में जूता नहीं होगा, जैसा बाके पेट से पैदा हुआ था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेरहना पा, बेरहना बदन और बगैर खतना किए हुए। कमा बदाना अव्वला खल्किन नुईदुहू, बारी ताला फरमाते हैं ऐसे पैदा होंगे, किसी की कोई चीज नहीं, सब चीजों का मालिक हकीकत में भी अल्लाह और जाहिरी एतबार से भी अल्लाह, किसी की कोई हुकूमत नहीं। लिमन अल-मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, अल्लाह ताला ही सवाल करेंगे आज किसकी हुकूमत, कोई जवाब देने वाला नहीं होगा, अल्लाह ताला खुद ही जवाब में फरमाएंगे लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, एक अल्लाह की जो गलबे वाला है। तो ये एहदिन मालिक यौमिद्दीन वह इसका इस्तेहजार होना चाहिए। ये चीजें जब पढ़े ना तो पढ़ते वक्त तो उसका ख्याल, जैसा कि शुरू में बतलाया था इस सूरत के जो मुख्तलिफ नाम हैं उन नामों में से एक नाम है सूरत सलात, नमाज में पढ़ी जाती है और अल्लाह ताला बाकायदा बंदा जब पढ़ता है तो उसका अल्लाह ताला जवाब देते हैं, उसका इस्तेहजार होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि बंदा जब नमाज में पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के, तमाम तारीफ अल्लाह ताला के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है, तो जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ता है तो अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं हमीदनी रब्बी हमीदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हमद बयान की, मेरी तारीफ की। ये इस्तेहजार होना चाहिए, आदमी बाकायदा पढ़े ठहरे, वह अल्लाह ताला की तरफ से मुझे जवाब मिल रहा है, उसका तसव्वुर करे। बाद अल्लाह के बंदे तो ऐसे गुजरे हैं जैसा कि शेख अकबर मोहिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक नकल किया जाता है, बड़े औलिया में से थे, सूफिया में से थे, कि नमाज में जब मैं सूरह फातिहा पढ़ता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पर ठहरता हूँ और अल्लाह का जवाब सुनने के बाद आगे बढ़ता हूँ, उसके बगैर आगे नहीं बढ़ता। ऐसे भी अल्लाह के बंदे, तो अल्लाह ताला का जवाब इस पर मिलता है हमीदनी रब्बी, तो हम कम से कम उसका तसव्वुर तो करें, इस्तेहजार तो करें कि मैंने इस वक्त ये पढ़ा और जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बतलाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हक है, अल्लाह ताला ने मेरे इस पढ़ने के जवाब में ये फरमाया, अगरचे मैंने नहीं सुना अपनी कम इसकी वजह से, लेकिन अल्लाह ने फरमाया है कि हमीदनी रब्बी हमीदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। और अर्रहमान अर्रहीम जब पढ़ता है बंदा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बारी ताला फरमाते हैं असना अलैय अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। और जब मालिक यौमिद्दीन के जो मालिक है रोजे जजा का, तो वो जब बंदा पढ़ता है तो बारी ताला फरमाते हैं मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी जो है बुजुर्गी बयान की। ये तीन आयतें जिसमें अल्लाह की ये है सिफात बयान की गई है। और फिर जब पढ़ता है इया का नाबुदु व इया का नस्तईन, तो हाजा बैनी व बैना अब्दी वले अब्दी मा साल, इया का नाबुदु ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, ये तो चूंकि इबादत अल्लाह की होती है तो ये आधा हिस्सा तो अल्लाह के लिए हुआ। व इया का नस्तईन और तुझी से मदद मांगते हैं तो ये बंदे की हाजत पूरी हुई, इसलिए उसको भले अब्दी मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है और बंदे को वो मिला या दिया मैंने जो उसने मांगा। और आगे जब पढ़ता जाएगा अहदना सिरातल मुस्तकीम तो हाजा ले अब्दी वले अब्दी मा सआला, हाजा ले अब्दी वले अब्दी मा सआला, ये मेरे बंदे के लिए है और मेरे बंदे ने जो मांगा वो मैंने उसको दिया। तो ये इस्तेजार होना चाहिए अहदना सिरातल मुस्तकीम। वहां पर पहुंचे थे कि ए अल्लाह जो है हमें सीधे रास्ते की हिदायत फरमा, सीधा रास्ता हमें अता फरमा, उसकी हिदायत फरमा। जैसा कि बतलाया था सीधा रास्ता, गया नमाज पढ़ते वक्त और इस सूरत को पढ़ते वक्त हर चीज में सीधा रास्ता, दुनिया की जो चीजें हैं उमूर हैं उनमें भी और आखिरत की उमूर में भी। भाई हम तिजारत करते हैं, तिजारत में भी अल्लाह हमको वही रास्ता जो तेरा बतलाया हुआ है हमें बतला, उसी के मुताबिक हम तिजारत करें, हलाल तरीके से कमाएं। और तिजारत के अंदर कोई गलत चीज जिसका तूने हमसे मना फरमाया है हम उसका इर्तिकाब न करें। वह ये इसमें सीधा रास्ता, हम इलाज मुआलजे के लिए जा रहे हैं तो उसमें भी सीधा रास्ता, कोई गलत तरीके कोई है नहीं। और जिसके पास जाए उसके ऊपर भी अल्लाह ताला गोया बीमारी की हकीकत मुनकशिप फरमाया, उसका इलाज भी अल्लाह ताला मुनकशिप फरमाए। तो हर चीज में अगर ये आदमी सवाल करेगा और तो सोचेगा अहदना सिरातल मुस्तकीम पढ़ते हुए तो अल्लाह ताला की तरफ से जैसा कि बतलाया गया वले अब्दी मा साला, बंदे ने जो मांगा वो मैंने दिया। शुरू में आपको बतलाया था कि इसकी फजीलत के सिलसिले में अहादीस के अंदर है, एक मरतबा हजरत जिब्रील हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे और एक आवाज आई ऊपर आसमान की तरफ से, उन्होंने सर उठा करके देखा, फरमाया आज आसमान का एक ऐसा दरवाजा खुला जो आज तक कभी नहीं खुला था, और आज उसमें से एक फरिश्ता उतरा जो कभी जमीन पर नहीं आया था। उसने कहा कि अल्लाह तआला ने आपको और आपकी उम्मत को दो नूर अता फरमाए जो किसी को पहले नहीं दिए गए, जो आदमी इससे दुआ फरमाएगा अल्लाह उसको कबूल कर, अल्लाह ने सिखलाई और अल्लाह ने ये दुआ हम पर लाजिम कर दी। हर नमाज में, नमाज की हर रकात में हम पढ़ते तो हैं लेकिन उसको पढ़ते वक्त जो उसकी तरफ तवज्जो ध्यान इस्तेजार होना चाहिए वो हम में नहीं, एक आदत बन गई है रोजाना की एक रूटीन की तरह हमारी जबान से ये अल्फाज अदा होते चले जाते हैं और हमारा ख्याल कहीं और किसी और चीज की तरफ होता है, तो उसका जो हकीकी फायदा है वो हमको पहुंचता नहीं। जरूरत है कि हम इसका एहतमाम करें, कोशिश करें और इसकी आदत डालें। तो बहरहाल ये जो है ये पांचवी आयत थी अहदना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह तुम हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा हर चीज में, दुनिया आखिरत के तमाम कामों में। सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, ये छठी आयत है उन लोगों का। अब ये सिरात मुस्तकीम क्या है, सिरात मुस्तकीम बतलाया जा रहा है उन लोगों का रास्ता जिस पर तूने इनाम किया, अल्लाह ताला ने अपने जिन बंदों के ऊपर इनाम फरमाया उनका रास्ता। दूसरी जगह सूरह निसा के अंदर बारी ताला का इरशाद है मन युतिल्लाह व रसूल फौलाएक मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबियीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन, कि जो लोग अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करते हैं दुनिया में, तो जब उन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत के साथ गुजारी तो अल्लाह ताला कयामत में वहां आखिरत में भी उनको उन इन लोग बंदों के साथ जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ अल्लाह उनको रखेंगे। वैसे जो मकाम और मर्तबा उनका है वो तो नहीं, लेकिन वहां आसानी के साथ वो आ जा सकेगा, मुलाकात कर सकेगा। जैसे भाई हमारा कोई जो है रफीक है सफर के अंदर फर्स्ट क्लास में बैठा हुआ है, उसके पास फर्स्ट क्लास का टिकट है, हम फर्स्ट क्लास में नहीं, हमारे पास टिकट नहीं बैठ सकते, लेकिन बहरहाल अगर हम गाड़ी का टिकट हमारे पास है तो मुलाकात के लिए कम से कम जावे तो गुंजाइश निकलती है बाजों की। तो बहरा अल्लाह ताला की तरफ से गोया उन तमाम लोगों को जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत का अहतमाम करते हैं उनको मौका दिया जाएगा कि इनकी मुलाकात जब चाहें कर लें, उनका दीदार कर लें। एक सहाबी ने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की थी कि अल्लाह के रसूल मुझे आपके साथ ऐसी मोहब्बत है कि आपको देखे बगैर मुझे चैन नहीं पड़ता, घर में होता हूँ और आपकी याद आता है तो आ जाता हूँ और देख लेता हूँ, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ दुनिया में तो मैं कर लेता हूँ आखिरत में क्या होगा। तो फिर उस पर अल्लाह तआला की तरफ से बताया गया। तो बहरहाल माल लदीन आनम ये इनाम जिन पर किया गया कौन है उस आयत में बतलाया गया मिनन नबीयीन यानि अंबिया। अंबिया तो वो जमात है जिन पर अल्लाह तबरक ताला वही भेजते हैं। नबुवत जो है किसी आदमी की इख्तियारी चीज नहीं, कोई आदमी अपने इरादे और इख्तियार से नबी बन सकता नहीं, वो तो अल्लाह ताला ही का इंतखाब होता है। अल्लाह ताला अपने बंदों में से बाज बंदों को चुनते हैं और उनके ऊपर फरिश्तों के जरिए से वही भेजते हैं और उनको गोया इस बात का पाबंद किया जाता है कि वही के जरिए से जो पैगाम तुमको दिए गए हैं हमारे उन पैगाम को हमारे दूसरे बंदों तक पहुंचा। ये अम्बिया और दूसरे बंदों की इसलाह का काम अल्लाह तबरक ताला उनके जरिए से लेते हैं। अब जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो अब नबुवत का सिलसिला तो खत्म हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। वैसे हजरत ईसा अल्लाह नबीना वाली सलात वसलाम क़यामत से पहले नाजिल होंगे लेकिन उनकी बासत तो हुजूर से पहले हो चुकी है। दोबारा एक तो हजरत अम्बिया व सिद्दीकीन और दूसरी जमात जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ वो सिद्दीकीन की है, यानी गोया अपने जाहिर और बातिन से वो अल्लाह के नबियों की तस्दीक कर चुके, यानी अल्लाह के नबियों को मानना ऐसा माना जाहिर से भी माना और दिल से भी माना। गोया उनके मानने के मामले में जो है उन्होंने जो है कोई दलील नहीं, बगैर दलील के सच्चे दिल से उनको तस्लीम किया। हजरत सिद्दीक अकबर जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबुवत से उनको आगाह किया फौरन ईमान ले आए, नबुवत की कोई दलील नहीं मांगी उन्होंने और हर मामले हर चीज में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेहराज से वापस तशरीफ लाए तो लोगों को ये ख्याल था, उनके पास अभी बात ये पहुंची नहीं थी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला, और लोगों को मालूम हुआ वो पहले जा करके कहने लगे कि भाई ये तुम्हारे तुम जिन पर ईमान लाए हो ये कहते वो कहते हैं तुम्हारा कोई दलील नहीं, दलील के बगैर सच्चे दिल से उनको तस्लीम कर लें और उनके जी जान से उनकी सदाकत की गवाही दें तो वो सिद्दीक कहलाते। और तीसरी जमात और शोहदा शहीदों की, गोया अल्लाह के दीन के लिए वो अपनी जान का नजराना पेश करते हैं, अपने आप को कुर्बान कर देते हैं अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए, उसकी हिफाजत के लिए। तो ये तीसरी जमात है जिन पर अल्लाह ताला का इनाम हुआ। और चौथी जमात शोहदाए वस सालिहीन नेक बंदे जो गोया ताआत हर ताआत का एहतमाम करते हैं और हर रो अल्लाह की मना की हुई चीज से अपने आप को बचाते, जर्रा बराबर भी उसमें कमी और कोताही नहीं, ताआत का मुकम्मल तौर पर एहतमाम और मनाही से मुकम्मल तौर पर इज्तिनाब, ये सालिहीन की जमात। अब कुछ बंदे जो उसमें कुछ कमी होता है तो वो अल्लाह ताला फिर इताअत की निस्बत से, आदमी को चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत का ऐसा एहतमाम करे कि किसी भी ताअत के मामले में उसकी बजावरी में उसकी तरफ से कोई कमी और कोताही नहीं होनी चाहिए और किसी भी मासियत से बचने के मामले में भी कोई कमी और कोताही नहीं होनी चाहिए। तो बहरहाल ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। ये गोया सिराते मुस्तकीम जो मांगा वो क्या है उसकी तायीन कर दी गई, बतलाया गया। देखो यहाँ सिराते मुस्तकीम के वजाहत के अंदर उन लोगों का रास्ता जिन पर अल्लाह ने انعام کیا، ایک بہت بڑی حقیقت اس کے ذریعے سے بتلائی گئی اور ایک غلط فہمی کو دور کیا گیا۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی قرآن ہمارے پاس ہے اور ہم عربی زبان جانتے ہیں، یا اگرچہ ہم عربی زبان جانتے نہیں لیکن آج کل تو قرآن کے ترجمے جو ہیں بہت کثرت سے ہو گئے، ہم اپنے طور پر قرآن کا مطالعہ کر کے جو ہے وہ اس کے مطابق عمل کر لیں گے، یہ ہماری ہدایت کے لیے کہا، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی سے پوچھیں کہ فلاں جو ہے عالم کیا، فلاں صالح کیا کہتے ہیں اور فلاں کیا کہتے ہیں، نہیں۔ تو باری تعالیٰ نے بتلا دیا کہ بھائی ہدایت کا راستہ اگر پانا چاہتی ہو تو یہ جو منعم علی جماعت ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا، جن میں سے چار، جو ان کی صحبت اختیار کرو، ان کی صحبت اختیار کرو گے تو ہی آپ کو ہدایت کا راستہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کا دستور یہی رہا ہے شروع سے کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی، کتابیں انسان کی ہدایت کے لیے ہی بھیجی جاتی ہیں۔ قرآن میں بھی ہدایت کا راستہ اللہ نے کھول کر بیان کر دیا ہے۔ میں نے جہاں ہدایت کی وضاحت کی تھی وہاں بتلایا تھا کہ ہدایت کی ایک قسم کیا ہے، راستہ بتلا دینا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بتلا ہی دیا ہے، سب کے لیے بتلایا گیا ہے، مومن کافر ہر ایک کے سامنے کھلی ہوئی کتاب ہے، لیکن پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو وہاں منزل تک پہنچا دے۔ یہ جو اصلی ہدایت ہے ایصال الی المطلوب، تو وہ اسی کا سوال کیا جا رہا ہے، اور یہ ہدایت کب ملے گی، جبکہ ان کی صحبت اختیار کی جائے گی، صدیقین کی اور شہداء کی اور صالحین کی، ان کی صحبت ہی سے آپ کو جو ہے صحیح راستہ ملے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کتابیں نازل کی، کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کا بھی سلسلہ رہا، کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ کتاب اتاری ہو اور اس کے ساتھ نبی اور پیغمبر نہ بھیجا ہو، جتنی بھی کتابیں اللہ نے بھیجی ہیں نبیوں اور پیغمبروں پر ہی بھیجی، ایسا تو ہوا ہے کہ پیغمبر بھیجا ساتھ میں کتاب نہیں ہے، پہلے بھیجی ہوئی کتاب کا اس کو تابع بنا دیا گیا، الگ سے کتاب نہیں دی گئی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اکیلی کتاب بھیجی ہو اللہ تعالیٰ نے اور جو ہے ساتھ میں پیغمبر اور نبی کو بھیجا نہ ہو، نہیں، یہ پیغمبر نبی ہوں گے تب ہی کتاب پر عمل کا طریقہ معلوم ہوگا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ نصیحت کی کتاب، یہ قرآن آپ پر اتارا تاکہ آپ ان لوگوں کے لیے یہ قرآن کی ہدایتوں کو واضح کریں، گویا قرآن کے بتلائے ہوئے رستے کو گویا نمونہ پیش کر کے عملی طور پر بتلانا یہ کام ہے، کس کا، پیغمبروں کا، اور جنہوں نے پیغمبروں کی صحبت اٹھائی، صدیقین، شہداء اور صلحاء کا، ان کے ساتھ رہو گے تو ہی آپ کو ہدایت کا راستہ ملے گا، خالی قرآن کے مطالعے سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے، مشرکین نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین نے لولا نزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یعنی ویسے بھی انہوں نے یوں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اکیلی یہ کتاب کیوں نہیں اتائی، اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس پر قدرت رکھتے تھے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر ایک کہ بھائی لیٹے ہوئے ہیں صبح کو جب اٹھے تکیے کے پاس قرآن رکھا ہوا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے اعلان کر دیا جاتا کہ بھائی تمہارے پاس جو ہے اللہ کی کتاب رکھ دی گئی ہے، اس کا مطالعہ کرو اور اس کے مطابق عمل کرو، لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ کتاب کے ساتھ اللہ نے رجال اللہ یعنی اللہ کے بندے، اللہ کے مخصوص بندے، پیغمبروں کو بھی بھیجا، تورات بھیجی تو تورات کس پر بھیجی، حضرت موسیٰ پر، زبور بھیجی تو حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اکیلی کوئی کتاب بھیج دی، اکیلی کتاب سے ہدایت نہیں۔ دنیا میں دیکھو دنیاوی علوم و فنون جو ہیں وہ بھی خالی کتاب پڑھ کر کے آتے نہیں، میڈیکل سائنس ہے، ڈاکٹر کوئی بننا چاہتا ہے ڈاکٹری کی کتابیں چھپی ہوئی موجود ہیں، ایک آدمی بہترین طور طریقے سے انگریزی زبان جانتا ہے تو وہ یوں کہے، وہ یوں دعویٰ کرے कि मैं मेडिकल साइंस की किताबें पढ़ के जो है डॉक्टर बन जाऊंगा और लोगों का इलाज करूंगा। अगर वो इलाज करेगा तो कब्रिस्तान आबाद करेगा। किसी डॉक्टर की सोहबत में रहे बगैर जो वो खाली मेडिकल साइंस की किताबें पढ़ने से डॉक्टर नहीं बन सकते, बल्कि ये दूसरी जो जैसे कुकिंग है यानी खाना पकाना एक फन है, तो खाना पकाने के सिलसिले में बाकायदा बेशुमार किताबें आपको जहाँ किताबें बिकती हैं दुकानों पर मिल जाएगी। फला उर्दू में फला दस्तरखान, फला दस्तरखान गुजराती में भी मिलती हैं, लेकिन अब कोई आदमी उन किताबों को खाली पढ़े, किसी बावर्ची की सोहबत उसने इख्तियार नहीं की, अकेला किताबें ला करके वो देख रहा है। उन किताबों से अगर वो अंदर बिरयानी का तरीका भी लिखा है, कौरमे का तरीका भी बना लिखा हुआ है, कौरमा बनाएगा तो कौरमा तो बनने वाला ही, पता नहीं क्या बन जाएगी जब तक के किसी बावर्ची की सोहबत इख्तियार नहीं करे, वहां तक ये पका नहीं पकता। भाई ये कपड़े सीने के फन के सिलसिले में, टेलरिंग के सिलसिले में बहुत सारी किताबें आपको मिलेगी दुकानों पर से। कोई आदमी खाली उन किताबों को पढ़ के जो है दर्जी बनना चाहे, टेलर बनना चाहे, वो कपड़ा तो क्या सिएगा, काज बनाना भी नहीं आएगा उसे। इसके लिए जरूरत है कि सोहबत इख्तियार करे दर्जी की। तो गोया दुनिया के उलूम और फनून के अंदर भी खाली किताबें पढ़ने से वो इल्म और फन नहीं आता, बल्कि उस फन का जो जानने वाला है, माहिर है, उसकी सोहबत इख्तियार करो और उसकी तरबियत में रहो, तब ये चीज आएगी। उसके बाद किताबें पढ़ोगे तो किताबें आपको फायदा पहुंचाएगी, वरना खाली किताबों से नहीं। तो खाली कुरान पढ़ के कोई आदमी हिदायत के रास्ते पर चलना चाहे नामुमकिन है। पैगंबरों की हिदायत के बगैर ये जो है हिदायत का रास्ता इख्तियार नहीं कर सकता। जो लोग यूं कहते हैं कि भाई हमारी हिदायत के लिए कुरान काफी है, हम कुरान के तर्जमे हो गए हैं, तफसीरें हो गई हैं, हम खुद ही उन तर्जमों से और तफसीरों से कुरान समझ करके उसके मुताबिक अमल करके हम हिदायत का रास्ता पा लेंगे, नहीं पा सकते। यही तरीका है कि जिन्होंने जिनको अल्लाह ने हिदायत दी है, जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है, उनकी सोहबत इख्तियार करो। इसीलिए कहा सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया। और वो कौन लोग हैं, अल्लाह ताला ने कुरान में दूसरी जगह वो चार जमातें उनकी बतलाई गई हैं। और फिर देखो ये हिदायत के रास्ते को अल्लाह ताला ने दोनों हैसियतों से महदूद कर दिया। मुस्बत हैसियत से तो ये कि उन लोगों का रास्ता जो जिन पर अल्लाह तूने इनाम किया, मनफी हैसियत से भी न उन लोगों का रास्ता कि जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ, वलद्दालीन न उनका रास्ता जो भटके हुए हैं, ये मनफी हैसियत से भी। गोया नेक सोहबत इख्तियार करो और गलत सोहबत से अपने आप को दूर रखो, तभी हिदायत का रास्ता पा सकोगे, वरना तो हिदायत का रास्ता मिलने वाला नहीं। अब ये जो मकदूब अलैहिम वलद्दालीन कहा गया है कि जिन पर तेरा गजब हुआ, वो कौन है, उस जमाने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके तायिन करके बतलाई। यहूद की तरह इशारा तिर्मिज़ी शरीफ में हजरत अदी बिन हातिम रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत में है, हुजूर ने उनको बतलाया कि जिन पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ यानि यहूद। उलमा फरमाते हैं कि उनको उनके सामने हक आया, उनके इल्म में आया, लेकिन उन्होंने उसको इख्तियार नहीं किया। सब यहूदी जानते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह के आखिरी पैगंबर है, जिनके मुतालिक अगली किताबों में बशारतें आई हैं, अल्लाह ने इत्तला दी, लेकिन उन्होंने उसको माना नहीं। क्यों? वो हसद की वजह से। अब तक उनके साथ अल्लाह ताला का जो इनाम और इकराम का मामला रहा, हजरत इब्राहिम अल्लाह नबियाना वाली सलातो वसलाम के दो बेटे थे, हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक, और हजरत इसहाक के बेटे थे हजरत याकूब, उन्हीं का नाम इसराइल, दूसरा नाम इसराइल था। उन्हीं के 12 बेटे और उन 12 बेटों से जो औलादें चली वो बनु इसराइल कहलाई, वही यहूद हैं। जितने नबी हजरत इब्राहिम के बाद हजरत ईसा तक आए, वो सब के सब बनु इसराइल में से आए। अल्लाह ताला ने अगली सारी किताबों में, तौरात में, इंजील में, जबूर में, सब किताबों में बशारत नबी आखिर जमान की, अल्लाह ताला आखिर में जिस नबी को भेजेंगे उसकी भी निशानियां बताई। अंदर ये नहीं कहा गया था कि वो बनी इस्माइल में से होंगे, उनकी दूसरी सारी अलामतें बतलाई। तो यहूद अब तक सारे नबी उनके उस खानदान में आए, उसकी वजह से उनको ये घमंड था, उनका ये ख्याल था कि नबी, आखिरी नबी भी हमारे अंदर ही आने चाहिए, आएंगे। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल की औलाद में से पैदा किया और आपको नबूवत, नबी आखिर जमान बना गया, तो जानने के बावजूद कि ये यही नबी हैं, सच्चे नबी हैं, माना नहीं असद की वजह। बहुत सी मरतबा ये जानने के बावजूद अमल न करना, उसको इख्तियार न करना, ये अल्लाह के गजब को दावत देता है। इस माना करके इनको मग़दूब अलीम कहा गया कि उन पर अल्लाह का गजब नाज़िल हुआ। पर ईसाई जो हैं वो राह हक से भटके हुए गुमराह उनको करार दिया गया। तो बहरहाल न तो उन लोगों का रास्ता जिन पर अल्लाह तबरक तआला का गजब नाज़िल हुआ, और न उनका रास्ता जो सही रास्ते से भटक गए, गोया उन लोगों का रास्ता जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ और उनकी जमातें भी अल्लाह ने मुतय्यन करके चारों बतला दिए। इस तरह सिरात मुस्तकीम की अल्लाह ताला ने क्या कर दी, तायीन कर दी कि अब आसानी के साथ बंदे उसके ऊपर चल सकते हैं। अल्लाह ताला हमारे लिए सिरात मुस्तकीम पर चलना आसान फरमाए। और जब पढ़ें इसको तो कहें आमीन। आमीन का माना है कि अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमा, इस्तजीब दावताना। ये आमीन भी जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत की खसूसियत बतलाई कि अल्लाह ताला ने जो खसूसियत के साथ जो चीज़ें उम्मत मोहम्मदिया को अता फरमाई उनमें से आमीन भी है। हुजूर फरमाते हैं यहूद इस पर भी तुम पर हसद करते हैं कि इनको ये चीज़ क्यों मिली।
ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका व तबारक इस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तरदा بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة हसन तुम वकीना अदाब नार। ए अल्लाह तुम हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा, तेरी मर्जियात पर हमको ज़्यादा से ज़्यादा चला कर तेरी नामर्जियात से हमारी पूरे पूरी हिफाजत फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़ों और सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में जारी करने और अपनाने की तो हमें तौफीक व सआदत अता फरमा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़ों की मोहब्बत और गैरों के तरीक़ों की नफ़रत हमारे कुलूब के अंदर डाल दे। तमाम रज़ाइल से हमको पाक और साफ फरमा कर महासिन अखलाक से मुजयन फरमा। तेरी मारिफत मोहब्बत के अनवार से हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमा। तेरी याद से हमारे दिलों को आबाद फरमा। दवाम ज़िक्र और दवा में ताहत की हमें तौफीक अता फरमा। तमाम अमाल में इखलास, इत्तेबा और एहतिसाब की कैफियत नसीब फरमा। हमें, हमारे अहलो आयाल और तमाम मुतालिकीन को अल्लाह सेहत, कुव्वत, आफियत, सलामती, दुनिया आखिरत की भलाइयों से माला माल फरमा। हमारी तमाम ज़रूरतों की तो अपने खजाना गैब से किफालत फरमा। हमें किसी का मोहताज हो दस्तनिगर न बना। हमारी रोजियों में बरकत और वसत अता फरमा। हमारी औलादों को अकायद हक्का, उलूम नाफिया, आमाल सालिह, अखलाक फाजिला से आरास्ता फरमा। बुरे अखलाक, बुरे किरदार व गुफ्तार, बुरे आदात व अतवार, बुरी सोहबतें, बुरे माहौल के बुरे असरात और बुरे लोगों की बुरी आदतों का निशाना बनने से अल्लाह उनकी पूरे पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह हमें और हमारे तमाम माताहतों को नमाज का कायम करने वाला बना दे, नमाज का इश्क व मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर डाल दे, नमाज को हमारी आँखों की ठंडक बना, नमाज का खुशू व खुजू हमें अता फरमा, नमाज के अनवार व बरकात से हमारी जिंदगियों और हमारे घरों को ए अल्लाह मुनव्वर और मामूर फरमा, इबादात का अहतमाम नसीब फरमा, अल्लाह मामलात की दुरुस्तगी अता फरमा, माशरत का हुस्न अता फरमा, आपसी हुकूक की अदायगी का अहतमाम नसीब फरमा, आपस की हक तलफियों से हमारी पूरे पूरी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमारे बीमारों को सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमा, मकरूज़ों के कर्ज़ों की अदायगी की शक्लें पैदा फरमा, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा, हाजतमंदों की हाजतें पूरी फरमा, कैदो बंद में महबूसों को रिहाई नसीब फरमा, मुकदमात में माखूज़ों को बरी फरमा। अल्लाह जो जिस मुसीबत में गिरफ्तार है उससे नजात अता फरमा। अल्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती जहाँ कहीं भी हो उसके ईमान और इस्लाम की, जानो माल की, इज्जत और आबरू की, अहल आयाल की, तिजारत और ज़रात और कारोबार की, हर चीज़ की पूरे पूरी हिफाजत फरमा। पूरे आलम में उम्मत मोहम्मदिया जहाँ कहीं मजलूमियत का शिकार है अल्लाह उसकी भरपूर नुसरत फरमा। जालिम के हाथ को जुल्म से रोक दे अल्लाह, गौता के मजलूमीन की भरपूर नुसरत फरमा, अपने फजल का मामला फरमा दे, अपने फजल का मामला फरमा दे, हमारी बेबसी पर अल्लाह रहम फरमा। अल्लाह हम सब से राजी हो जा, तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर और भलाई तुझसे मांगी हमें और पूरी उम्मत को अता फरमा, और जिन शुरू और बुराइयों से पना चाही उससे हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। अल्लाह इस मजलिस में शरीक तेरे तमाम बंदों की जायज़ और नेक मुरादें पूरी फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सैयदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमईन।
ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।